ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਜੁਤਾ ਪਦ ਕਮਲੰ।
ਜਨਮ ਕਰਮ ਚ ਮੇ ਦਿਵਯਮ ਏਵਮ ਯੋ ਵੇਤਿ ਤਤ੍ਵਤਃ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਦੇਹਮ ਪੁਨਰ੍ਜਨ੍ਮ ਨੇਤਿ ਮਾਮੇਤਿ ਸੋ ਅਰਜੁਨਃ। ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਰਮ ਕਰਮ ਚਾ ਭੀ ਮੇ ਮੇਰੇ ਦਿਵਯਮ ਦਿਵਯ ਏਵਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਹ ਜੋ ਕੋਈ ਵੇਤਿ ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਤਤ੍ਵਤਃ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਮੇ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਛੋੜਕਰ ਦੇਹਮ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕੋ ਪੁਨਃ ਫਿਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਨਾ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਏਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮਾਮ ਮੁਝਕੋ ਏਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਹ ਵਹ ਅਰਜੁਨ ਹੇ ਅਰਜੁਨ। ਅਨੁਵਾਦ ਤਥਾ ਤਾਤਪਰਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮੂਰਤਿ ਅਭੈ ਚਰਨਾਰਵਿੰਦ ਭਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਿਲ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਨੁਵਾਦ ਹੇ ਅਰਜੁਨ ਅਭੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਵਿਰਭਾਵ ਤਥਾ ਕਰਮੋ ਕੀ ਦਿਵਯ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੋ ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਵਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕੋ ਛੋੜਨੇ ਪਰ ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਪੁਨਃ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੇਤਾ ਅਪਿਤੂ ਮੇਰੇ ਸਨਾਤਨ ਧਾਮ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤਾਤਪਰਯ ਛਠੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿਵਯ ਧਾਮ ਸੇ ਉਨਕੇ ਅਵਤਰਣ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਆਵਿਰਭਾਵ ਕੀ ਸਤਿਯ ਕੋ ਸਮਝ ਲੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਹ ਇਸ ਭਵਬੰਧਨ ਸੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕੋ ਛੋੜਤੇ ਹੀ ਵਹ ਤੁਰੰਤ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਧਾਮ ਕੋ ਲੌਟ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਭਵਬੰਧਨ ਸੇ ਜੀਵ ਕੀ ਐਸੀ ਮੁਕਤੀ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਾਦੀ ਤਥਾ ਯੋਗੀ ਜਨ ਪਰਯਾਪਤ ਕਸ਼ਟ ਤਥਾ ਅਨੇਕਾਨੇਕ ਜਨਮੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਤੇ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਪਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹੇ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤੀ ਮੇ ਤਦਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਵਹ ਆਂਸ਼ਿਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਲੌਟ ਆਨੇ ਕਾ ਭੈ ਬਣਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਦਿਵਯ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਥਾ ਉਨਕੇ ਕਾਰਯਕਲਾਪੋਂ ਕੋ ਸਮਝਨੇ ਮਾਤਰ ਸੇ ਭਕਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਾ ਅੰਤ ਹੋਣੇ ਪਰ ਭਗਵਤ ਧਾਮ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਲੌਟ ਆਨੇ ਕਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਹਿਤਾ ਮੇ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਤਥਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਅਦਵੈਤਮ ਅਚੁਤਮ ਅਨਾਦਿ ਅਨੰਤ ਰੂਪਮ। ਯਦਯਪਿ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਅਨੇਕ ਦਿਵਯ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇ ਅਦਵੈ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਤ ਕੋ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਵਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਯਦਯਪਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨੋ ਤਥਾ ਗਿਆਨ ਯੋਗੀਓ ਕੇ ਲੀਏ ਅਗਮਯ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਵੇਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਬੋਧਨੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਮੇ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਏਕੋ ਦੇਵੋ ਨਿਤ ਲੀਲਾਨੁਰਕਤੋ ਭਕਤ ਵਿਆਪੀ ਹੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ। ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਕਤੋ ਕੇ ਸਾਥ ਅਨੇਕਾਨੇਕ ਦਿਵਯ ਰੂਪੋ ਮੇ ਸਦੈਵ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਦ ਵਚਨ ਕੀ ਸਵਯਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਮੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸਤਿ ਕੋ ਵੇਦ ਤਥਾ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਚਿੰਤਨ ਮੇ ਸਮੈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਤਾ ਵਹ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਚਰਮ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਿ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇ ਮਨੁਸ਼ਯ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਸੇ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੇ ਵੇਦਿਕ ਵਾਕ ਤਤਵਮ ਅਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਯਾ ਉਨਸੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਹੀ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਵਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਸੇ ਅਵਿਲੰਬ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਦਿਵਯ ਸੰਗਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦੋਂ ਮੇ ਐਸਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਵਤ ਭਕਤ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਸਕੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਿਮਲਿਖਿਤ ਵੇਦ ਵਚਨ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤਮੇਵ ਵਿਦਿਤਵਾਤੀ ਮ੍ਰਿਤਯੁਮੇਤਿ ਨਾਨਿਆ ਪੰਥਾ ਵਿਦਯਤੇ ਅਨਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਸੇ ਹੀ ਮਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਤਥਾ ਮ੍ਰਿਤਯੁ ਸੇ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਅਨਯ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਸੂਤਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है, और मधु पात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्ति की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोमिष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदामयि ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो एक अनाउंसमेंट है, बच्चों के लिए नीचे अलग से कक्षा हो रही है, जो भी छोटे बच्चे हैं वो नीचे चले जाएं, वहाँ पर केशव कुमार प्रभु छोटे बच्चों का क्लास लेंगे। तो ये आज का जो श्लोक है अध्याय 4 और दिव्य ज्ञान से है, और दिव्य ज्ञान जो भगवान अपने बारे में यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, है ना। चौथे अध्याय से पहले भगवान ने अलग अलग विषयों के बारे में ज्ञान दिया, है ना। सबसे पहले ज्ञान दिया आत्मा के बारे में, उसके बाद ज्ञान दिया कर्म कांड के बारे में, फिर दिया कर्म योग के बारे में, और कर्म योग के अंत में फिर भगवान ने बताया कि कैसे आप अपनी इंद्रियों को और मन को संयमित कर सकते हैं, वो दिव्य ज्ञान के द्वारा। तो यहाँ भगवान दिव्य ज्ञान बता रहे हैं, और इसी अध्याय के प्रारंभ में हमने देखा कि ये जो दिव्य ज्ञान है, भगवद गीता का ज्ञान है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, कि सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को ये भगवद गीता सुनाई गई, फिर उनके उनके वंश में चलती आ रही थी, और काल क्रम में समय के प्रभाव से वो नष्ट हो गए। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा कि भगवान का जो अवतरण होता है, जो भगवान का दिव्य शरीर है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और भगवान का इस भौतिक जगत में आने का प्रयोजन क्या है। हमने देखे थे श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, और उसके बाद परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम्। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, उसको समझने के बाद उससे फल क्या प्राप्त होगा, है ना। जब हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले अपना फायदा सोचते हैं कि यहां मैं जाऊंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, है ना। मन की शांति मिलेगी या अलग अलग तरह के कुछ फायदे होंगे। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान लेने के बाद क्या फायदा होने वाला है ना। तो भगवान क्या बता रहे हैं, जन्म कर्म चा मे दिव्यम, जो मेरे जो जन्म है और जो मेरे कर्म है दिव्य, उनको जो समझता है, कैसे समझता है, तत्वता, है ना। यहाँ ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तत्वता। तत्वता मतलब वास्तव में शास्त्रों के अनुसार उसका क्या होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जब वो शरीर छोड़ता है तो उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर क्या होगा, मामेति नेति मामेति स्वर्जुना, वो मेरे धाम वापस आ जाता है ना। तो जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्वता समझता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम वापस चला जाता है। तो वास्तव में तत्वता समझना बहुत जरूरी है, है ना। खासकर भारत में तो श्री कृष्ण, राम, जो भी विष्णु अवतार हैं, उनके बारे में, उन्होंने क्या किया, सबको पता होता है, है ना। फिर भी वास्तव में कैसे पता होगा वो जानना जरूरी है शास्त्रों के माध्यम से। तो बहुत सारे अलग अलग लोगों की बायोग्राफी है, है ना। कुछ लोग आत्मकथा लिखते हैं, कुछ लोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है, उसके उसमें भी बहुत सारे जन्म और कर्म दिए होते हैं, है ना। भगवान यह क्या बता रहे हैं, जन्म और कर्म, मेरे जन्म और कर्म को समझना। तो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बायोग्राफी हैं, ऑटोबायोग्राफी हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के जन्म और कर्म के बारे में बताया जाता है, है ना। एक हिटलर की बायोग्राफी है, माइन कैम्फ, मेरा संघर्ष, तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को पढ़ने में। कुछ बायोग्राफी है कि वो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए और साइकिल पर निरमा बेचते थे, पाउडर बेचते थे, फिर उन्होंने इतना संघर्ष किया, संघर्ष करते गए करते गए करते गए, और धीरे धीरे उन्होंने व्यापार चालू किया, और एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ही बड़ी कंपनी, बहुत ही बड़े कॉलेज के मालिक हो गए। तो हमको बहुत मोटिवेशनल ऐसी बुक्स पढ़ना है जिससे क्या होगा, हम भी जो जीवन संघर्ष कर रहे हैं, जो हमको निराशा लग रही है जीवन में, जब ऐसी हम पुस्तकों को पढ़ेंगे जिससे क्या होंगे, हमको बहुत प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा किस बात की मिलेगी, जिससे हम इस संसार में और कैसे अच्छी तरह से भोग कर सके। ज्यादातर जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं किस बात पर बता रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, जो भी शक्ति है सब भगवान ने तुम्हारे अंदर दे रखी है, बस तुम्हें उसको बाहर निकालना है, पूरे संसार को एक्सप्लोर करना है और जीवन संघर्ष में आगे बढ़ना है, और तुम भी एक जगह ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। जैसे ये जो बायोग्राफी हमने पढ़ा, बहुत ही गरीब लड़का था, वो फुटपाथ पे पैदा हुआ, धीरे धीरे उसने कुछ बेचना चालू किया, कुछ संघर्ष किया और आज यहां पहुंच गए। तो हम भी ऐसे कर सकते। तो ये और जन्म और कर्म हम पढ़ेंगे, खासकर जो बद्ध जीव हैं, भौतिकतावादी लोगों के, तो क्या होगा, त्यक्त्वा जेहं पुनर्जन्म, हमारा बार बार क्या होता रहेगा, पुनर्जन्म होता रहेगा, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठेरे सैनम, है ना। तो लोगों को बहुत पढ़ने का शौक होता है ना, अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ने का शौक होता है, लेकिन वो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी जो धारणा है, उसके जो अनर्थ है, वो हमारे अंदर भी आते हैं। कोई भी हमने बुक उठाई और कोई भी ऐसा स्पीकर है हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत डेंजरस है वो, है ना। इसीलिए अगर हमको किसी का जन्म और कर्म वो पढ़ना है, तो भगवान का पढ़ना है, भगवद गीता पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है। तो शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जिन शास्त्रों में, जिन पुस्तकों में भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान नहीं होता है, वो किताबें या मैगजीन या अखबार वो कैसे होती हैं, वायसम तीर्थम, कौए के तीर्थ स्थान, कौए के तीर्थ स्थान जैसे। जिस किताब में या जिस पेपर में भगवान और भगवान के भक्तों का प्रमाणिक रूप से गुणगान नहीं किया गया है, तो अगर हम ऐसे तीर्थ स्थानों में जाएंगे जहां कौए बैठते हैं, कौए कहाँ बैठते हैं, जहां बहुत गंदगी होती है ना, एक बहुत सुंदर बगीचा होगा, है ना, उसमें सुंदर सुंदर फूल लगे होंगे, गुलाब लगा हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, लेकिन किसी बगीचे में कोने में एक ऐसी गंदगी पूरा भरी होगी, है ना, सड़ा हुआ कुछ होगा, तो कौआ क्या करेगा, वो वहीं पर आके बैठेगा, उसको पूरा बगीचा नहीं दिखेगा, वो जो गंदगी है वो दिखेगी। तो इसी तरह से जो लोग इस संसार में ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहते हैं, वो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो है उनके जन्म और कर्म से प्रभावित हो जाते हैं, और फिर हमको लगता है कि हम भी उसी तरह से भोग करेंगे, है ना। तो अभी भगवान के जन्म और कर्म हमें तो पता है, अभी सुनने की क्या जरूरत है, अभी जन्माष्टमी आ रही, सबको पता है भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, फिर बाद में वृंदावन गए, फिर कुछ साल वहां पर रहे, फिर मथुरा आ गए, मथुरा से द्वारिका आ गए, फिर द्वारिका से कुरुक्षेत्र गए, सबको पता है। तो फिर नया क्या है? सबको तो पता है, जन्म ही पता है, कर्म ही पता है, लेकिन जानते हुए भी नहीं पता है, है ना? पता होते हुए भी नहीं पता है। तो लोगों की अलग अलग क्या धारणाएं होती हैं, पहले उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद जो भगवान बोल रहे हैं तत्वता, उसके बारे में देखेंगे। तो अलग अलग धारणाएं क्या होती है भगवान की? जैसे एक धारणा होती है कि जो कृष्ण है वो क्या है, एक माइथोलॉजिकल फिगर है, एक है ना, एक काल्पनिक चित्र है, इमेजिनरी फॉर्म है, काल्पनिक कोई व्यक्ति है, वास्तव में कोई ऐसा हुआ नहीं है। ये तो क्या है, समाज में सभी लोग एक अच्छी तरह से रहें, सब नैतिकता का पालन करें, भाईचारे की भावना हो, है ना, कोई किसी से झगड़े नहीं, तो उस नैतिकता की भावना को बनाने के लिए हमने अपना एक एक इमेजिन किया है कि कृष्ण जैसे एक व्यक्ति हुए थे। वास्तव में कृष्ण कोई हुए नहीं, राम कुछ हुए नहीं। ये तो क्या है, लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। एक ऐसे लोग हैं, इसीलिए वो शास्त्रों को क्या बोलते हैं, हिंदू माइथोलॉजी। ये हमारे शास्त्र क्या है, हिंदू माइथोलॉजी। एक तो हिंदू शब्द भी सही नहीं है और माइथोलॉजी शब्द भी सही नहीं है ना। तो इस तरह से लोगों की धारणाएं होती हैं। और जब हमारे जैसे हमारे स्कूल में या कॉलेज में बच्चों को भी इसी तरह से ट्रेन किया जाता है ना, एक पाषाण युग था जिसमें लोग पत्थरों से पत्थरों के औजार बनाते थे, पत्थरों के औजार से धीरे धीरे काम करते थे। फिर एक युग आया कि लोग अग्नि का उपयोग करने लगे, फिर अग्नि के उपयोग से फिर एक युग आया जिसमें लोग लैंग्वेज बोलने लगे, मुद्राओं का विनिमय चालू हो गया। फिर एक युग आया जिसमें लोग सुपर नेचुरल जो पावर है उनकी पूजा करने लगे, और उस सुपर नेचुरल पावर में से एक पावर क्या है, कृष्ण। वो पूजा बस करने लगे, कोई था नहीं ऐसा, पहले तो पाषाण युग था, है ना, सब ऐसे ही, किसी को भाषा नहीं आता था, कपड़े भी नहीं पहनते थे। ये तो क्या है, लोगों ने बस एक मन को बहलाने के लिए एक कृष्ण रूप दे दिया बस, बाकी कृष्ण वगैरह कोई नहीं, राम कोई नहीं है, बस एक बच्चों में एक अच्छे संस्कार डालने के लिए। बाकी तो हमें संसार में क्या है, ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना, भोग करना। तो इस तरह से वो प्रस्तुत करते हैं कि कृष्ण क्या है, एक माइथोलॉजिकल फिगर है, एक काल्पनिक कोई चित्र है। फिर कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण एक हिस्टोरिकल फिगर है, ऐतिहासिक पुरुष है, कृष्ण हुए हैं, हम मानते हैं, हमें भी कृष्ण में विश्वास है। हाँ, इतिहास में कृष्ण कभी हुए हैं और हमारे जैसे थे, बस थोड़ा सा शक्ति ज्यादा था उनमें, हमसे ज्यादा शक्ति था, वो भी हमारे तरह एक मनुष्य थे और थोड़ा शक्ति ज्यादा था, बस एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है, आए और गए। जैसे हमारे जन्म होता है, कुछ समय रहते हैं और मृत्यु हो जाती है, उसी तरह कृष्ण आए, उनका जन्म हुआ, कुछ समय रहे, और एक जब कृष्ण प्रभास क्षेत्र में थे तो एक शिकारी ने उनको तीर मारा पैर में और कृष्ण का मृत्यु हो गया, है ना। तो है कृष्ण है, हम मानते हैं, हम भी धार्मिक हैं, हम भी कृष्ण को मानते हैं, लेकिन कृष्ण क्या है, एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है, ऐतिहासिक पुरुष है, है ना। कृष्ण भगवान है ये नहीं, कृष्ण एक शक्तिशाली कोई व्यक्ति है। फिर कृष्ण जो है हिंदुओं के भगवान है, कृष्ण क्या है, केवल हिंदुओं के भगवान। हमारे भगवान अलग हैं, हमारी क्या है, मोनोपोली चल रही है, हमारा कृष्ण हमारे भगवान है और कोई पूजा नहीं कर सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए और बहुत सारे यूरोपियन अमेरिकन लोग भक्त बने और फिर प्रभुपाद उनको यहाँ लेके आए भारत में, तो यहाँ पर भारत के बहुत सारे सो कॉल्ड ब्राह्मण या और लोग हम बोल सकते हैं, वो विरोध करने लगे कि ये जो कृष्ण मंत्र जप करना है या भगवान की पूजा करना है, ये तो तभी हो सकता है जब आप हिंदू परिवार में ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हो तभी आप कर सकते हैं, तब उससे पहले नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारे भगवान हैं, हिंदुओं के भगवान हैं। क्रिश्चियन के भगवान अलग हैं, मुस्लिम के भगवान अलग हैं, और हमारे भगवान कृष्ण हैं, है ना। तो एक हिंदुओं के भगवान हैं, ऐसा लोगों को मानना है। फिर और कृष्ण क्या है, कृष्ण एक पॉलिटिशियन है, एक क्या है राजनेता है, और एक दूसरे को लड़ाने में बहुत एक्सपर्ट है ना। कृष्ण से क्या हम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, ये भगवद गीता क्या है, बहुत अच्छी बुक है, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। भगवद गीता पढ़िए आप और मैनेजमेंट सीख जाइए, है ना। और कृष्ण पॉलिटिशियन है, अगर कृष्ण चाहते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं होता, तो कृष्ण की इच्छा थी, है ना। बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, है ना, कुछ अलग ही चलता है, तो ये तो पॉलिटिशियन जैसे हैं, है ना। और उनसे हम बहुत अच्छा मैनेजमेंट सीख सकते हैं। और कुछ लोग कृष्ण को क्या मानते हैं, कृष्ण है, यस हम भी कृष्ण को मानते हैं, हम भी धार्मिक हैं, कृष्ण है। कौन है कृष्ण, कृष्ण है वो जो निराकार ब्रह्म है, वो कृष्ण का रूप लेके आया है। वास्तव में कुछ है नहीं, वास्तव में तो क्या है, निराकार ब्रह्म है, एक ब्रह्म ज्योति है, एक लाइट है, और जब इस भौतिक जगत में कुछ कार्य करना होता है तो वो जो लाइट है, वो जो ब्रह्म ज्योति है, कभी कृष्ण रूप में आ जाती है, कभी राम रूप में आ जाती है, कभी विष्णु रूप में आ जाती है, अंततः तो कुछ नहीं है, अंततः तो क्या है, एक लाइट है। फिर और कृष्ण के ऊपर भौतिक धारणाएं क्या है, कृष्ण ने क्या है, बहुत सारे अनैतिक कार्य किए, है ना, बहुत सारे अनैतिक कार्य किए। राम जो है उनका चरित्र अच्छा है, लेकिन जो कृष्ण है उनका चरित्र थोड़ा कुछ गलतियां किया उन्होंने, और उसकी वजह से एक सेक्ट है, नाम लेना नहीं चाहूंगा, एक सेक्ट है बोलता है अभी कृष्ण जो है नरक में है, और नरक में है, और वो शुद्ध हो जाएंगे धीरे धीरे और जाके मुनि बन जाएंगे फिर, क्योंकि कृष्ण ने क्या किए, इतने सारे अलग अलग अनैतिक कार्य किए, है ना, रासलीला किया, वस्त्रहरण लीला किया, इतनी सारे 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, कुरुक्षेत्र के में इतने लोगों मरवाया, है ना। तो कृष्ण ने इतने सारे अनैतिक कार्य किए, है ना, कर्ण इतना बेचारा, इतना अच्छा, उसका पहिया फंस गया था और कृष्ण ने बोला देखो मारो अभी तीर मारो, तो वो कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को नहीं समझे, कैसे वो दिव्य है। फिर बोलते हैं कुछ लोगों का मानना है, जैसे गुजरात में एक सेक्ट है, बोलते हैं नर से नारायण बनने की विधि, हम आपको क्या सिखाएंगे, नर से नारायण बन जाएंगे आप, है ना, हम आप तपस्या करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे और धीरे धीरे आपके पाप खत्म होते जाएंगे और एक दिन आप समझ पाएंगे कि सो हम, मैं भी वही हूं, मैं भी कृष्ण हूं, मैं भी क्या हूं, नारायण। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, कमी नहीं है लोगों की, है ना। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो द्विभुज रूप है कृष्ण का वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो विराट रूप है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कृष्ण ने विराट रूप दिखाया अर्जुन के सामने वो उनका मूल रूप है, और उस विराट रूप से फिर द्विभुज रूप आया। तो विराट रूप में क्या है, पूरी सृष्टि समाई हुई है, चंद्रमा है ना, सूर्य है, नदियां हैं, पहाड़ है, ये सब जब अर्जुन देखते हैं तो विराट रूप में सब कुछ दिखाई देता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि विराट रूप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो द्विभुज रूप है वो तो विराट रूप से आया है कुछ समय के लिए, वास्तव में तो विराट रूप है। और लोगों का क्या मानना है, कृष्ण है, बहुत सारे भगवान हैं, है ना, गणेश भगवान है, दुर्गा भगवान है, कृष्ण भगवान है, किसी की पूजा करो आप, तो सुपरमार्केट लगा हुआ है, मॉल खुला हुआ है, उसमें 33 करोड़ वो हैं, प्रोडक्ट हैं। आप 33 करोड़ प्रोडक्ट में से कोई एक भी ले लीजिए, पहुंचना तो सबको उधर ही है। आप किसी की पूजा कीजिए, सबको पहुंचना उधर ही है। तो सब समान है, कृष्ण भी समान है, देवी देवता भी समान है, जिसकी भी पूजा करो सब समान है। आप कृष्ण को मानते अच्छी बात है, हम इनको मानते हैं, हम उसको मानते, हम शिव जी को मानते हैं, हम उनकी पूजा करेंगे। हमारे मानने या ना मानने से भगवान थोड़ी चेंज हो जाएंगे। हम बोलेंगे पार्लियामेंट में सारे मंत्री प्रधानमंत्री हैं, या पार्लियामेंट जो देश के सारे नागरिक हैं सबको प्रधानमंत्री जैसा अधिकार है, तो ये तो मूर्खता होगी ना। और लोगों की मूर्खताएं क्या है कि जो मूर्ति है, विग्रह है, ये जो चित्र है, ये तो एक काल्पनिक है, ये वास्तव में ऐसा नहीं होता है ना। कृष्ण तो क्या निराकार होते हैं, ये तो हमने एक उनको आकृति दे दी है। भगवान तो क्या है, असीमित हैं। भगवान क्या है, अनंत हैं। भगवान हर जगह फैले हुए हैं, और आपने मूर्ति का रूप देके भगवान को एक जगह बांध दिया, लिमिट कर दी उनकी। भगवान तो हर जगह फैले हैं, और आपने उनको विग्रह का रूप देके क्या कर दिया, एक लिमिटेड फॉर्म में दे दिया। इसीलिए हम क्या है, हम किसी मूर्ति या फोटो इसकी पूजा नहीं करते, है ना। भगवान तो हर जगह है, हर कण कण में भगवान समाये हुए हैं। वो जो कण कण में हर जगह शक्ति जो व्याप्त है, उस रूप में हम कृष्ण की पूजा करते हैं, है ना। और कई लोग भक्ति तत्व को समझे बिना कृष्ण तो हमारे लाला हैं, है ना, कृष्ण तो हमारे बच्चे हैं, है ना, कृष्ण हमारे पति हैं, कृष्ण हमारे पुत्र हैं, ऐसे भी समझते हैं। आर्टिफिशियली जो महान भक्त हैं उनकी नकल करना चाहते हैं, है ना, कि हमारे बच्चे जैसे हैं, हमको बच्चे जैसे रखते हैं हम कृष्ण, है ना। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी भूल धारणा। अभी देखेंगे एक एक करके। तो जब हम कृष्ण के बारे में प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से सुनेंगे, तब ये जितनी भूल धारणाएं हैं कृष्ण के बारे में उससे मुक्त होंगे, तब उससे कहा जाएगा कि तत्वता हमने भगवान को जाना। नहीं तो आजकल क्या होता है, हर व्यक्ति अपना एक नया पंथ चालू कर देता है। थोड़ा सा यहां से सुना, थोड़ा इधर से पढ़ा, थोड़ा यहां सुना, थोड़ा यहां टीवी देखा, थोड़ा सा मैगजीन देखा, उसको मिक्स किया, खिचड़ी बनाई और बोला मुझे तो सब पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है, मैंने ये भी सुन रखा है, उनको भी सुन रखा है, इनको भी देख रखा है, सबको पता है। तो ये समस्या है लोगों के साथ कि जो गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए जो भक्तगण हैं, गुरु हैं, उनसे ना सुन के बहुत जगह से सुनते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, खिचड़ी बना के खुद का जीवन खिचड़ी हो जाता है। तो तत्वता नहीं समझ पाएंगे। तत्वता समझने के लिए तो परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजरस्यो विदु, परंपरा के द्वारा ही हम कृष्ण को तत्वता समझ पाएंगे, है ना। नहीं तो अपने अपने मत में चले जाएंगे, अपने अपने वाद में चले जाएंगे, है ना, और उसके बहुत गलत गलत परिणाम होते हैं। वो हम आगे जो भगवद गीता आगे 16वें अध्याय में बताया है कि जो इस तरह के अलग अलग जो गलत बात को फॉलो करते हैं उनके साथ क्या होता है ना। जैसे कुछ समय पहले एक बुक आई थी, है ना, बेस्ट सेलर, राम, एक थी बुक राम और एक थी सीता, है ना, राम और सीता। तो आज मैं थोड़ा सा उसको पढ़ा, एक दो पेज, और उसके रिव्यू, कुछ लोग रिव्यू देते हैं कि ये बुक कैसी है, है ना। तो जो सीता बुक है उसके रिव्यूज आए, तो कोई माताजी थे, वो बोल रहे हैं कि ये जो सीता का चरित्र है उस पर बहुत ही विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है, ऐसा तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे, ये बुक बहुत पहले पब्लिश होना चाहिए था, इसमें जो सीता है उनकी वास्तविक जो पिक्चर है उसको प्रस्तुत किया गया। हम रामायण में पढ़ते हैं, हाँ सीता जो है पतिव्रता स्त्री है, आदर्श पत्नी है, आदर्श माँ है, वो पढ़ते हैं, लेकिन ये सीता बुक में तो बताया गया है कि जो सीता थी वो प्राइम मिनिस्टर थी और बहुत बड़ी योद्धा थी, एग्जीक्यूटिव हेड थी वो। ये वास्तव में सीता की चरित्र पर सही प्रकाश डाला गया। वो जो पूरी जो स्टोरी है पूरी फिक्शन है, पूरी काल्पनिक है, और काल्पनिक चीज को पढ़ रहे हैं और क्या लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वास्तव में सीता के ऊपर वास्तविक प्रकाश डाला गया। अभी वो उन्होंने पढ़ भी लिया, उसमें बताया है थोड़ा सा कि सीता, उसमें पूरा जो रामायण है और जो खुद की धारणा है उसको क्या किया, पूरा मिक्स कर दिया। उन्होंने बताया कि जनक है, उनकी पत्नी है, वो जाते हैं तो खेत में एक छोटी सी पुत्री होती है, वो वहाँ पर रहती हैं, उसकी कोई एक गिद्ध है वो रक्षा करता है, तो वो जनक हैं वो ले आते हैं, और जनक जो है जो पुत्री को किसी गुरु के संरक्षण में रख देते हैं, और वहाँ गुरु के संरक्षण में जो सीता है मार्शल आर्ट सीखती हैं, युद्ध की विद्या सीखती हैं, है ना, घर की सफाई और पाक विद्या छोड़ के मार्शल आर्ट सीखती हैं। फिर मार्शल आर्ट सीखती हैं, उसके बाद जो जनक हैं वो जब राज छोड़ के चले जाते हैं तो सीता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और उनकी जो बहन है उर्मिला वो एक कोई एग्जीक्यूटिव हेड या इस तरह से बनती है। तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, हाँ ये सीता का चरित्र, ऐसे हमको बनना है। जैसे हम पुस्तक वितरण करने गए एक बार तो रामायण दिखाया कि आप रामायण लीजिए, ये रामायण मूल रामायण है, वाल्मीकि कृत रामायण है। तो उन्होंने लोगों ने कहा कि ये रामायण में वो दिया है कि सीता उसमें पूरा मैनेजमेंट संभालती थी जनकपुरी का और सब कार्यभार देखती थी, ये दिया है इसमें? बोले वो तो नहीं दिया है। बोले तो फिर हमको नहीं चाहिए, हमें तो वो रामायण चाहिए। अभी देखिए कितना दुष्प्रचार हो रहा है। जो अभी आने वाली जनरेशन है वो तो शास्त्र पढ़ने में तो कोई रुचि है नहीं, और इधर उधर की नॉवेल पढ़ते हैं और उसमें जब ऐसी चीजें दिखेंगी तो वो क्या समझेंगे, यही सीता और राम। फिर राम एक बुक है, उसमें बताया गया है कि जो राम है बहुत ही आदर्श व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए पूरा बलिदान कर दिया, लेकिन उनकी प्रजा ने उनके साथ धोखा किया, उनकी प्रजा ने उनको उनके देश से निकाल दिया, तो अभी राम प्रजा से बदला लेंगे कि नहीं लेंगे, इतना करके उन्होंने छोड़ दिया, और ये राम का चरित्र की शुरुआत है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी लोग क्या है, खासकर भारत में सब पुण्यशाली है क्योंकि पुण्यशाली भूमि है, और भारत वर्ष में जिनको जीवन मिलता है उनका स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक विषयों के प्रति रुचि होता है, स्वाभाविक रूप से। लेकिन गलत रूप से प्रस्तुत करने वाले बहुत बैठे हुए, और वो क्या करते हैं इस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर लोगों में भूल धारणाएं आती हैं और उसी तरह से वो फॉलो करना चालू कर देते हैं, है ना। ठीक, फिर हम एक एक पॉइंट लेते हैं। कैसे हमने देखा कि जो कृष्ण के बारे में अलग अलग भूल धारणा है वो कैसे गलत है। तो अभी एक भूल धारणा है कि हम आपको नर से नारायण बनने की विधि सिखाएंगे। 30 दिन का क्रैश कोर्स, नर से नारायण बन जाइए आप। तो क्या सही है गलत है? और इसको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, हम नारायण बन जाएंगे, हमारे अंदर सारी शक्ति आ जाएगी। तो नारायण पहली बात तो बनते नहीं है, नारायण नारायणी है। अगर किसी विधि से नारायण बन रहे हैं इसका मतलब वो विधि नारायण से ऊपर है, और नारायण मतलब सर्वशक्तिमान, सबके स्रोत, सबको मेंटेन करने वाले, सबको अविनष्ट करने वाले, तो पूरे सृष्टिकर्ता वही है, और आपने एक ऐसी विधि निकाली जिससे आप नारायण बन रहे हैं, मतलब वो विधि नारायण से ऊपर है। और जीव कभी नारायण बन नहीं सकता है, जीव सेवक है और नारायण सेव्य है, वो स्वामी है और जीव सेवक है। तो एक स्वामी और सेवक का संबंध हमेशा स्वामी और सेवक का रहेगा, ना कि जो सेवक है वो स्वामी बन जाए, है ना। फिर लोग बोलते हैं कि जो मूर्ति है ये तो आपने कल्पना बनाई है, कि इतने तीन साढ़े तीन फिट की मूर्ति है, चेहरा ऐसा है, ये ऐसे भगवान ऐसे खड़े हुए हैं, हाथ में मुरली लिए हुए हैं और सिर में मोर पंख है, ये तो आपकी धारणा है। तो शास्त्रों में कई जगहों पर भगवान के रूप के बारे में पूरी तरह से विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। जैसे ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता में बताया गया है ना, वेणुम कुणंतम अरविंदलाक्ष, तो भगवान की जो आंखें हैं वो कमल की तरह हैं, भगवान वेणु बजा रहे हैं, है ना, भगवान त्रिभंग रूप में खड़े हुए हैं, भगवान के जो परिकर हैं वो गाय हैं। तो जो भगवान और भगवान से संबंधित जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो पार्षद हैं, वो कोई काल्पनिक नहीं है, किसी का मन बहलाने के लिए फोटो या विग्रह नहीं बना दिए, ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों के अनुसार उसको बताया गया है ना। अभी कोई बोलेगा ठीक है शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन ये मूर्ति तो पत्थर की है ना, ये भगवान थोड़ी है, ये मेटल की है ना, या पेंटिंग किया गया है, भगवान थोड़ी हो गई है। तो भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति है और अंतरंगा शक्ति है। तो बहिरंगा शक्ति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये आते हैं। तो भगवान का जो भी विग्रह बनाए जाते हैं वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके मिश्रण से बनाए जाते हैं। तो भगवान के लिए आध्यात्मिक शक्ति भी है, भगवान के लिए भौतिक शक्ति भी है ना। तो भगवान अपनी किसी भी शक्ति के द्वारा प्रकट हो सकते हैं, भगवान बाध्य नहीं है, क्योंकि हम भौतिक चीजों के अलावा और कुछ और किसी को नहीं देख सकते हैं, इसीलिए भगवान कृपावश विग्रह का रूप लेकर आते हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं, हम केवल भौतिक चीजों को देख सकते हैं। तो इसीलिए भगवान जो भौतिक वस्तुओं से बना हुआ विग्रह का रूप धारण करते हैं। लेकिन भगवान क्या है, जो महान महान भक्त होते हैं उनसे भगवान वार्तालाप करते हैं अपने विग्रह रूप में। तो ऐसा नहीं कि भगवान भौतिक पदार्थों से अपना रूप लेके आए हैं तो भगवान नहीं है वहां पर, कृपावश उस रूप में आए, क्योंकि हम उसके अलावा कुछ देख नहीं सकते। अगर हम शुद्ध हो जाएं, पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, तो भगवान साक्षात रूप में आएंगे, लेकिन अभी आएंगे तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे। अभी से दुर्योधन है, दुर्योधन के सामने भगवान गए तो दुर्योधन पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाए। और ऊपर से ये यादव है ना, ये विद्रोही है, इसको पकड़ो, जैसे विराट रूप दिखाया भगवान ने, जब शांति दूत बन के गए और भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो दुर्योधन ने क्या बोला कि पकड़ो ये यादव को। तो अगर हम शुद्ध नहीं है और भगवान हमारे सामने भी आ जाए तो भी हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, है ना। तो हमको क्या, धीरे धीरे शुद्ध होना। फिर विराट रूप ज्यादा महत्वपूर्ण है, कृष्ण रूप विराट रूप से आया, लेकिन हम अगर 11वें अध्याय पढ़ेंगे, किसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें विराट रूप अध्याय में भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं तो जो अर्जुन है बहुत ज्यादा एकदम डर जाते हैं, है ना, और अर्जुन फिर भगवान से माफी मांगते हैं कि मैंने आपको सखा, हे यादव, हे कृष्ण कह के इस तरह से बुलाया है ना, तो आप मुझे माफ कीजिए। फिर बाद में कृष्ण वहां पर कहते हैं कि भगवान मुझे, मैंने आपका विराट रूप देख लिया है, अब मुझे आपका मूल द्विभुज रूप देखना है। तो भगवान फिर विराट रूप से अपना मूल द्विभुज रूप फिर से पुनः प्रकट करते हैं, और फिर वहां पर आता है सौम्य बपू, कि भगवान का जो बपू है, भगवान का ये शरीर है बहुत ही सौम्य है, बहुत ही सुंदर है। और फिर अर्जुन वहां पर भगवान को प्रार्थना करते हैं, और वो हम पढ़ेंगे तो उससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जो कृष्ण है उनसे विराट रूप आया, ना कि विराट रूप से कृष्ण आया, है ना। ऐसे दिल्ली में एक कोई पंथ है, तो वहां पर बोलते हैं कि मैं अपने शिष्यों को विराट रूप दिखा सकता हूँ, गुरु हैं, गुरु जी हैं, गुरु जी बोलते हैं कि मैं अपने शिष्यों को विराट रूप दिखाऊंगा। विराट रूप कैसे दिखाएंगे, पीछे लाइट सिस्टम लगा लेंगे, उससे पूरा विराट रूप दिखेगा। और ऐसा हुआ भी कि वो लाइट सिस्टम फेल हो गया तो विराट रूप ही बंद हो गया। ऐसे ऐसे लोग हैं, और लोग उनके पास जाते हैं क्योंकि भगवद्गीता का ज्ञान नहीं है, यथारूप में भगवद्गीता पढ़ी नहीं, फिर भगवान कृष्ण है, हम उनको मानते हैं, लेकिन वो निराकार ब्रह्म का एक आकार रूप है। कृष्ण है लेकिन वास्तव में निराकार है, वो एक रूप लेके आए हैं, है ना। वो भजन आता है कभी राम बन के कभी श्याम बन के, है ना। तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के नहीं, हमेशा से कृष्ण है, हमेशा से राम है। और भगवान यहां पर एक विशेष प्रयोजन से यहां पर आते हैं। तो भगवद्गीता से देख सकते हैं, भगवद्गीता के श्लोक से भगवान भगवद्गीता के सातवें अध्याय बोलते हैं, अब जानंती माम मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम परम भावम न जानंतो मम भूत महेश्वरम, है ना। कि जो मूर्ख लोग हैं, जो कम बुद्धिमान है, वो सोचते हैं कि मैं मनुष्य रूप में आया हूं, उससे पहले निराकार था और उसके बाद फिर से निराकार हो जाऊंगा, कुछ समय के लिए आकार रूप में प्रकट हुआ, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के जो कलयुग में अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, एक बार चैतन्य महाप्रभु यात्रा में जा रहे थे वृंदावन यात्रा में, तो वहां पर एक राम भक्त मिले और वो 24 घंटे राम नाम राम नाम राम नाम ऐसे लेते थे। तो उनके साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके सेवक भी थे, तो उनके सेवक ने कहा कि महाप्रभु ये बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े राम के भक्त हैं, 24 घंटे बस राम का नाम लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। तो उनके सेवक ने कहा कि आप मिलना चाहेंगे, बोले मुझे नहीं मिलना। तो वो उनके सेवक समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या है कि चैतन्य महाप्रभु मिलना नहीं चाहते हैं। तो कुछ दिन हो गए, वो जो राम भक्त हैं वो स्वयं आ गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप बाहर जाइए, यहाँ से बाहर निकलिए, मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना है। तो उनके सेवक समझ नहीं पाए कि ये क्या है। तो उन्होंने पूछा कि आप वो राम भक्त हैं, उनसे मिलना क्यों नहीं चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पूछ के आओ कि राम कौन है, जिनका वो राम राम नाम ले रहे हैं, राम 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 या सीताराम सीताराम जो नाम ले रहे हैं, उनसे पूछ के आओ कि कौन है, राम कौन है। तो गए पूछने कि राम कौन है। तो बोलते हैं राम कौन है, जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण रूप लेके आया है और उस सगुण रूप का उस आकार का मैं नाम ले रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक लोग होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अंदर से क्या चलता रहता है कि ये तो वो निराकार से आया, वो एक लाइट से आया, उस लाइट का प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है अलग अलग रूपों में। तो इसको बोलते हैं मायावाद, है ना। कि हम सुप्रीम किसको मान रहे हैं, एक लाइट को, एक ज्योति को, और उससे एक रूप आ रहा है, गलत है। ये भगवद्गीता का सातवें अध्याय में समझाएगा। फिर भगवान पॉलिटिशियन है, या भगवान से हम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। तो भगवान के आने का प्रमुख उद्देश्य नहीं है कि मैनेजमेंट सिखाना, भगवान तो इस संसार का मैनेजमेंट बंद कराना चाहते हैं कि इस संसार का मैनेजमेंट बंद करो और आध्यात्मिक जगत वापस आ जाओ। जैसे जेल है, अभी भगवद्गीता मिली तो भगवद्गीता से हम सीख रहे हैं कि जेल को कैसे अच्छी तरह से मैनेज करना है, जेल की साफ सफाई कैसे रखनी है, जेल की जो सलाखें हैं उसको कैसे साफ करना है, क्यों हम भगवद्गीता सीख रहे हैं। और भगवद्गीता का उद्देश्य क्या है, जेल से कैसे बाहर निकले। तो भगवद्गीता को यूज कर रहे हैं किसके लिए, खुद के लिए, है ना। लाइफ स्टाइल गुरु होते हैं कुछ, है ना, कैसे क्या खाना है, कैसे उठना है, आपको डायबिटीज हो गई तो ये लेना है, ब्लड प्रेशर हो गया तो ये लेना है, किससे, सब भगवद्गीता में। भगवद्गीता का प्रमुख प्रयोजन ये नहीं है कि लाइफ स्टाइल कैसे सुधारी जाए, वो एक गौण है। जब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, तो अपने आप ही लाइफ इस तरह से मैनेज होगी कि हम अंततः भगवान के धाम जाएंगे। हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह से हो जाएगा कि उसको हमें अलग से सीखने की जरूरत नहीं होगी। तो और एक तरह से देखा जाए तो यस, भगवान हर चीज में श्रेष्ठ है, भगवान सबसे बड़े पॉलिटिशियन है, यस। लेकिन भगवान पॉलिटिशियन है उसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला, उसमें सबका फायदा होने वाला। भगवान हर चीज में श्रेष्ठ है ना, भगवान सबसे प्रिय मित्र भी है, सबसे अच्छे सखा भी है, सबसे अच्छे पति भी हैं, भगवान हर चीज में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए भगवान सबसे अच्छे पॉलिटिशियन भी है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जैसे भौतिक जो हमारी भौतिक जगत में अवधारणा होती है वो हम भगवान के ऊपर थोपना चाहते हैं, है ना। जैसे हम एक व्यक्ति हैं, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान हमसे थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है। यहां पॉलिटिक्स ऐसे होती है, भगवान ने भी एक दूसरे को ऐसे लड़ाया भगवान। लेकिन ऐसे श्रीमद् भागवतम में आता है, एक श्लोक है जिसमें बताया है कि जब अर्जुन बाण चलाते हैं तो उनके बाण के स्पर्श से जिन सैनिकों को बाण लगता है वो जो सैनिक है वो शुद्ध हो जाते हैं। जैसे अर्जुन के बाण का स्पर्श सैनिकों को लगता है और जब वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं और भगवान को देखते हुए वो शरीर त्याग करते हैं तो सीधे भगवान के धाम जाते हैं, है ना। तो भगवान ने जो भी कुरुक्षेत्र युद्ध किया, ऐसा नहीं कि कई लोगों को उनको मारना है या भगवान पक्षपाती है, पांडवों का पक्ष लिया कौरवों का, भगवान सबके लिए समान है। समा हम सर्वभूतेषु ना मे द्विषस्ति ना प्रिय, है ना। जैसे बारिश है, बारिश गिर रही है तो एक बंजर जमीन है और एक उपजाऊ जमीन है, बारिश हर जगह गिर रही है। अभी जो बंजर जमीन होगी उस पर कुछ लगने नहीं वाला, और उपजाऊ भूमि होगी उस पर बहुत सारे पेड़ पौधे लग जाएंगे। तो पानी तो सबके लिए सेम है, तो भगवान ने सबके लिए कृपा दी है, भगवान ने सबके लिए भगवद गीता का संदेश दिया है। अभी हमारा हृदय उपजाऊ है या हमारा हृदय बंजर जैसा है वो हमें अभी देखना है। भगवान की तरफ से तो सब हो गया, अभी हमारी बारी है, हमें आगे बढ़ना है। तो यस, भगवान केवल पॉलिटिशियन नहीं है और केवल मैनेजमेंट सिखाने नहीं आए भगवान यहाँ पर। फिर हिंदू भगवान, हिंदुओं के भगवान है कृष्ण, जो है हिंदू के भगवान है। कई लोग बोलते हैं कि आप ये हिंदू धर्म क्रिश्चियन लोगों को क्यों सिखा रहे हैं, मुस्लिमों को क्यों सिखा रहे हैं, नहीं तो गलत है जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। लेकिन पूरी भगवद गीता में हिंदू शब्द कहीं भी नहीं आया, कहीं भी नहीं आया, सनातन आया। भगवान क्या बोले, ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, है ना। कि जीव है, भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि भारत में पैदा हुए या एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए, जो भी जीव है वो सब मेरे सनातन अंश है। अभी जीव में चाहे वो भारतीय हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, पक्षी हो, पशु हो, कीड़े हो, सारे जीव क्या है, भगवान के सनातन अंश हैं। सनातन, सनातन शब्द का अर्थ क्या है, जिसका कोई प्रारंभ या अंत नहीं है। और दूसरा अर्थ क्या है कि उस वस्तु से उस गुण को कभी भी अलग नहीं किया जा सके। तो हमारा जो सनातन धर्म है या जैव धर्म है, धर्म मतलब भगवान की सेवा करना, है ना। अभी हम किसी भी परिवार में किसी भी देश में पैदा हुए, भगवान की सेवा करने के लिए तो कोई रोक टोक नहीं है। अभी आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको मेडिसिन पढ़ना है या इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो मैं हिंदू परिवार से हूँ तो मैं इंजीनियरिंग केवल हिंदू टीचर से सीखूंगा, मुस्लिम टीचर से मैं मेडिसिन नहीं सीखूंगा या क्रिश्चियन टीचर से मैं मेडिसिन नहीं सीखूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और जो विषय है वो केवल उसी टीचर से सीखूंगा, तो ये तो गलत है ना। तो उसी तरह धर्म मतलब भगवान कौन है और भगवान से कैसे प्रेम करना है, उसके बारे में ये भगवत ज्ञान है। अभी वो ज्ञान भगवत गीता से, बाइबल से, कुरान से, वेद से, कहीं से मिले उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। तो ये भगवान हिंदू, हिंदुओं के भगवान है, ये भी गलत धारणा। फिर भगवान ऐतिहासिक पुरुष है, तो है ऐतिहासिक पुरुष तो है, भगवान पहले आए, है ना। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोबारा आए और कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में भगवान अभी आए। जब हम ऐतिहासिक पुरुष बोलते हैं उससे क्या इंडिकेट होता है, कुछ समय के लिए आए और चले गए। लेकिन भगवान हमेशा से हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य रात में हमारी दृष्टि के सामने नहीं है, लेकिन सूर्य कहीं दूसरी जगह होगा और जब सुबह होगी तो सूर्य फिर से उदय हो जाएगा। उसी तरह भगवान इस पृथ्वी लोक पर, इस जो चतुर्युग युग है उसमें द्वापर में आए, लेकिन भगवान अभी दूसरी जगह चले गए, फिर उसके बाद और कहीं चले जाएंगे। तो भगवान तो हमेशा से हैं, ऐसे नहीं भगवान की मृत्यु हो गई भगवान की मृत्यु नहीं होती। भगवान जैसे सूर्य है अप्रकट होता है, उसी तरह भगवान भी हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं तो है ना। तो केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं है भगवान, है ना। और माइथोलॉजिकल कि ये सब क्या है, भूल धारण, मतलब ये क्या है, सब काल्पनिक है। ये आजकल लोगों के मन में बहुत, खासकर जो युवा हैं उनके मन में बहुत बैठा दिया गया कि ये सब तो काल्पनिक चीज़ें हैं, है ना। क्योंकि हमको भगवान दिखाई नहीं देते, अगर भगवान है तो हमको दिखना चाहिए, हमको दिख नहीं रहे हैं इसलिए भगवान नहीं है। तो हमें अपनी आंखों पर बहुत गर्व है, हमें अपनी आंखों में बहुत गर्व है कि जो हमारी आंखों से दिखाई देगा वो ही उसी को हम मानेंगे। तो एक बार शिल प्रभुपाद से ऐसे ही पूछा कि शिल प्रभुपाद कि भगवान को दिखाइए, है ना, भगवान अगर देख नहीं सकते तो है नहीं। तो शिल प्रभुपाद एक जगह आर्गुमेंट देते हैं कि आपने महात्मा गांधी को देखा, आपने महात्मा गांधी को देखा, और नहीं देखा तो इसका मतलब महात्मा गांधी नहीं हुए। आपने हिटलर को देखा, नहीं देखा, आइंस्टीन को देखा, नहीं देखा, फिर क्यों मान रहे हैं आप। जब वहां पर आता है कि आइंस्टीन ने ऐसा ये थ्योरी दिया, न्यूटन ने ये दिया, तब हम कुछ नहीं बोलते, अरे न्यूटन हुआ कि नहीं हुआ, ये कहीं ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहे हैं, ये गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं। और जैसी भगवद गीता आती है, अरे ये तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, यहाँ पर मंदिर मत जाना, आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। और जब वो हमारे कॉलेज में पढ़ाएंगे तो उसको हम कोई नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे एक जैसे कोई भी पदार्थ है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो कई लोगों का साइंस बैकग्राउंड होगा तो किसी ने आज तक इलेक्ट्रॉन देखा नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं हाँ इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट वाचा, साइंटिस्ट ने कहा, श्री 1008 आइंस्टीन वाचा, क्योंकि वो बोल रहे हैं तो वो तो सही होगा। अब भगवद गीता बोल रहे हैं तो वो तो सही नहीं होगा क्योंकि तो हमने देखा ही नहीं। तो ये समस्या है, इन आंखों की भी लिमिट बहुत कम है ना। जैसे रेंज आती है 400 से 700 नैनोमीटर, उसके बीच में हम देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। हमें जैसे मोबाइल, आपका मोबाइल है तो उसकी बहुत सारी वेव्स पूरे कमरे में घूम रही हैं, तो किसी को दिखाई दे रही है, किसी को दृष्टि ऐसी विशेष दृष्टि से सारी रेज दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमारी एक्सरे नहीं देख सकते, रेडियो वेव्स नहीं देख सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, और हम बोल रहे हैं कि भगवान को दिखाओ। मोदी को जब मेरे सामने लाके खड़ा करोगे तब मैं मानूंगा मोदी प्रधानमंत्री, उससे पहले मैं नहीं मानूंगा। उसी तरह जब भगवान मेरे सामने आ जाएंगे, भगवान को दिखा देंगे, तब मैं भगवान को मानूंगा। मतलब ये कितना बड़ा अहंकार है कि जब तक भगवान दिखेंगे नहीं तब तक मैं भगवान को मानूंगा, है ना। तो भगवान कोई काल्पनिक माइथोलॉजिकल फिगर नहीं है। और अगर हम आप लोगों ने जिन्होंने प्रभुपाद की कुछ पुस्तकें पढ़ी है और हम शास्त्रों को और गहराई से पढ़ेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं कि शास्त्रों में जो भी सब चीज़ें बताई गई हैं वो सही हैं, और समय के साथ साथ जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे भी ये धीरे धीरे चीज़ें मैच हो रही कि यस जो शास्त्रों में दिया है वो सही है। और जो हमारी आधुनिक विज्ञान है वो हमेशा समय के साथ चेंज होता रहता है। आज हमने जो पढ़ाया वो हो सकता है 50 साल के बाद वो चेंज हो जाए, वो रिसर्च पूरी चेंज हो जाए, लेकिन ये भगवद गीता का ज्ञान है वो कभी चेंज नहीं होगा। भगवान ने भगवद गीता सूर्यदेव को बताई तब भी ये भगवद गीता थी, जब अर्जुन को बताया तब भी यही है, और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमारे पास भी आ रही है ना। तो ये कोई काल्पनिक नहीं है, है ना, ये वास्तव में है। और जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं जो बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, वास्तव में वो काल्पनिक है। काल्पनिक इस सेंस में कि उन चीज़ों को पढ़ने से क्या फ़ायदा होने वाला है, वो एक जीव है, एक बद्ध जीव है, बद्ध जीव की कहानी है। जैसे अमेरिका में लोगों को अपने ऊपर लिखने का बहुत शौक होता है ना, अपने ऊपर लिख के जाएंगे। कई लोग बोलते हैं जीवन में ऐसा करके जाओ कि सब लोग याद रखें, है ना, ऐसा करके जाओ सब आपको याद रखेंगे ना। कितने समय याद रखेंगे, ना, किसी ने जॉन एफ कैनेडी, कौन था जॉन एफ कैनेडी जर्मनी में, एक ऐसे यूरोप में एक व्यक्ति था जॉन एफ जे एफ कैनेडी अमेरिका में, बहुत फेमस था, किसी को पता है? मुझे भी नहीं पता। अभी यहां बहुत फेमस है सचिन तेंदुलकर, 100 साल के बाद कौन याद रखेगा? कोई याद नहीं रखने वाला। अभी विराट कोहली, अमेरिका में जाएंगे विराट कोहली किसी को नहीं पता, यूरोप में जाएंगे नहीं पता। तो ये सब क्या है? रिलेटिव ट्रूथ है। रिलेटिव ट्रूथ एक होता है एब्सोल्यूट ट्रूथ, एक होता है रिलेटिव ट्रूथ। तो रिलेटिव ट्रूथ के जन्म और कर्म पढ़ना, सुनना, देखना, इसमें बहुत आनंद आता है। ये जो रिलेटिव ट्रूथ है ये सब हमको क्या है, इस भौतिक संसार में बांधेंगे। लेकिन जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ कृष्ण, राम, विष्णु, उनके बारे में सुनेंगे, उनकी जन्म की दिव्यता को जानेंगे, उनके कर्म की दिव्यता को जानेंगे, तो हम इस भौतिक जगत से निकल के भगवत धाम जाएंगे। तो कुछ हम भगवान की कुछ लीला है उसके बारे में देखेंगे कि कैसे लोग दिव्यता को नहीं समझ। इसमें दिव्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्य मतलब जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है। जैसे भगवान ईशोपनिषद है, ईशोपनिषद में भगवान का एक नाम है, उसको बोलते हैं अपाप विद्धम। अपाप विद्धम, अपाप विद्धम मतलब जिसको कोई भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं अपाप विद्धम। तो श्री प्रभुपाद वहां तात्पर्य में बता रहे हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें अगर स्वच्छ सरोवर में पड़ती हैं और उसी सूर्य की किरणें एक कीचड़ में पड़ती हैं, तो जो सूर्य होता है उस स्वच्छ सरोवर को और स्वच्छ कर देगा और जो कीचड़ है उसको भी साफ कर देगा। लेकिन दोनों को साफ करने के बाद सूर्य की शुद्धता में कोई भी अंतर नहीं आएगा। सूर्य तब भी शुद्ध है चाहे उसकी किरणें कीचड़ के ऊपर क्यों ना गिरे। तो भगवान कोई लीला कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ, आदान प्रदान कर रहे हैं, और ऊपरी दृष्टिकोण से हमको लग रहा है कि ये तो गलत है, ये तो अनैतिक है, ये कैसे हो सकता है, भगवान ने ऐसा किया था इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम जो हम अपने जो कर्म हैं, जो हमारा जो ज्ञान है, उससे भगवान को नापने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे रूपा बोलते हैं डॉक्टर फ्रॉग फिलोसफी, कुएं का मेढक, है ना, कि कुएं का मेढक है जिसका पूरा जीवन कुएं में गया, और एक दूसरा मेढक आया अटलांटिक महासागर से, और कुएं के मेढक ने बोला कहाँ से आया, बोले मैं अटलांटिक महासागर से आया। और कितना बड़ा है वो कुएं, इस कुएं से थोड़ा सा बड़ा होगा, 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, नहीं बहुत बड़ा है, 10 गुना होगा। तो वो जो कुएं का मेढक है वो कभी जो अटलांटिक महासागर है उसको समझ नहीं पाएगा। तो हम अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर भगवान को नहीं समझ सकते। जब हम शास्त्रों के द्वारा, प्रमाणिक गुरु के द्वारा सुनते हैं, तब हम भगवान के जन्म और कर्म को समझ पाते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि भगवान की लीला से संबंधित है कि भगवान राम ने बाली को छुप के मारा, है ना, तो भगवान ने गलत किया। तो इस वजह से जब कृष्ण रूप में आए तो बाली एक शिकारी के रूप में आया, और उस शिकारी ने जो कृष्ण है उनके पैर पे तीर मारा और फिर भगवान की मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब भगवान भी क्या है, कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। जैसे हम कर्म बंधन में हैं उसी तरह से भगवान भी कर्म बंधन में है, है ना। तो ये ऊपरी दृष्टिकोण है, हमने कहीं सीरियल में देख लिया, कहीं पढ़ लिया और उससे अपनी एक धारणा बना ली कि भगवान ने ऐसा किया। लेकिन जब उसकी हम डिटेल में जाएंगे तब पता चलेगा कि बाली को क्यों मारा, और बाली को मारने के बाद बाली स्वयं भगवान के पास गया और बाली ने भगवान से माफी मांगी, है ना, और बाली ने कहा कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जो शरीर त्याग कर रहा हूँ वो आपका जो मुख है उसको देखते हुए शरीर त्याग कर रहा हूं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है, है ना। तो अगर हम पूरी तरह से रामायण पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जो बाली है वो स्वयं बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि मेरे हाथों आपकी मृत्यु हुई और आपके सामने मृत्यु हुई, और हम लोग जो है पूरी तरह से न पढ़ने के कारण हम बोल रहे हैं कि बाली के साथ गलत किया, है ना। फिर बोलते हैं कि वो बाली शिकारी बन के आया, है ना। तो जब शिकारी वो आए तो भगवान विश्राम कर रहे थे और भगवान के जो चरण है वो चमक रहा था, तो जो बहेलिया है वो शिकारी है, उसने सोचा कि भगवान कोई कोई पशु है ना जिसकी आंख दिख रही है। तो शिकारी मारता है और फिर पास में जाता है तो देखते हैं वहाँ कृष्ण है और तीर से कुछ नहीं होता है। और जो शिकारी है वो बहुत माफ़ी मांगता है कि मैंने क्या कर दिया, है ना, आपके पैर पैसे चरण कमल पर आपके तीर चलाया। तो भगवान ने बोला कि कोई बात नहीं, ये मेरी एक योजना है, मुझे किसी तरह यहाँ से अपने धाम अभी वापस जाना, अपने धाम को अपने पार्षदों को साथ में लेके जाना, है ना, तुम्हारी कोई उसमें गलती नहीं। अभी जब पूरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना, अभी एक साधारण शिकारी ने वो भी इतना दूर से तीर मारा तो वो भी भगवान के पैर पर, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण के ऊपर कितने सारे बाण चलाए, कितने सारे, और भीष्म पितामह तो कितने शक्तिशाली योद्धा हैं, और तीर पर तीर चलाए तब भगवान को कुछ नहीं हुआ, वैसे भी कुछ होने नहीं वाला, और एक शिकारी के साधारण शिकारी के तीर चलाने से भगवान की मृत्यु हो गई। तो ये क्या है? तो जब हम भगवान के जन्म और कर्म को तत्वता नहीं समझेंगे तो ये सब गलत फहमियां आएंगी, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों की गलत फहमियां हैं जिसके बारे में अभी पास में जन्माष्टमी आ रहा है अगले महीने 3 तारीख को, तो हर संडे कुछ ना कुछ इस विषय पर चर्चा की जाएगी, कैसे लोग भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं उसको दिव्य ना समझकर एक साधारण मनुष्य की तरह आकलन करना चाहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।
हमारा एक प्रश्न ये है, जैसे
जी आप बताइए, मैं रिपीट करूंगा।
मेरा एक ये प्रश्न है, जैसे कि मुझे बहुत भूख लगी है,
जैसे मुझे बहुत भूख लगी है, हाँ,
तो मैं जा रहा हूँ,
हाँ,
गया,
हाँ,
तो मेरी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले मेरी भूख मिले,
हाँ,
तो ये जरूरी तो ये है कि खाना मेरी मम्मी देगी, पापा भी तो दे सकते हैं, तो मेरी मेन प्रायोरिटी तो कि मेरी भूख मिले, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि मैं जरूरी तो नहीं है कि जिस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत गीता नहीं होती, अब मुझे अगर घर में बीज खरीदना है तो जरूरी तो नहीं है कि
घर में क्या घर में क्या खरीदना है
पूरा कर सके,
घर में क्या खरीदना है,
अगर मुझे अपने शौक पूरे करने
हैं,
अच्छी लाइफ जीनी है,
हाँ,
तो ये जरूरी तो नहीं है कि मुझे इंजीनियर ही बनना, डॉक्टर भी तो बन सकते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि धर्म अगर जोड़ने का काम करती है तो फिर क्यों, धर्म का मतलब सत्य है और सत्य ही जब सारे सब लोग बताते हैं तो फिर ना किसी भी, अब एक पेड़ में बहुत सी सारी डालियां रहती है, अगर मुझे ऊपर जाना है तो हम किसी एक पार्टिकुलर डाली से तो जा सकते हैं, लेकिन मतलब
अलग अलग तो नहीं, अलग अलग किसने कहा,
तो जैसे कभी कभी धारणा बन जाती है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ
नहीं धारणा किसने बनाया है,
कृष्ण भगवान को मानना चाहिए,
नहीं नहीं धारणा किसने बनाया है,
हम लोगों के बीच में है,
तो हम लोगों की तो बात हो ही नहीं रही, हम तो हम शास्त्र की बात कर रहे हैं,
तो हमें भोलेनाथ बाबा की पूजा करनी चाहिए,
हाँ पूरा सम्मान करना चाहिए,
जैसे कि मेरे पापा हैं उन्होंने बचपन से ही काली माँ की पूजा की, और मैं सच कह रहा हूँ कि उनको कृष्ण भगवान से जितना उनको अपनी माँ काली से प्रेम है, और शायद उनको भगवान कृष्ण से नाम है, मैं तो भगवान कृष्ण को जानता हूँ, ओढ़नी पत्नी से बैठा हूँ आपके सामने, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो भी तो सत्य है ना।
नहीं, सत्य निर्धारित कैसे होगा आपके, मेरे आपके बोलने से सत्य निर्धारित होगा क्या?
प्रभु जी जैसे कि
नहीं, नहीं, एक मिनट, एक अभी इसका आंसर है। तो पूछ, प्रश्न ये है कि कोई काली की पूजा कर रहा है, कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, वो कृष्ण की पूजा, वो भी तो सत्य है। तो पूरे प्रवचन में तो वही तो बताया मैंने आपको कि लोग सोच रहे हैं कि सभी देवी देवता हैं, सभी देवी देवता भगवान हैं। हमें जो भी चर्चा करना है वो तो शास्त्रों के अनुसार करना है ना, शास्त्रों में क्या दिया। हम अपने मन से, हमारी पीढ़ी में ऐसा चला आ रहा है, हमारे वंश में ऐसा चला आ रहा है, हमारे एरिया में ऐसा चला आ रहा है, वो सत्य है। उसके आधार पर सत्य कैसे निर्धारित होगा? सत्य के लिए एक ऑथोरिटी होना चाहिए ना। अगर सत्य के लिए कोई ऑथोरिटी नहीं है तो कोई अपने अपने अनुसार सत्य बनाएंगे? तो शास्त्रों के आधार पर निर्धारित होगा किसकी हमको भक्ति करना है, किसको आदर देना है, वो सब शास्त्रों में दिया है ना। ये कोई ऐसा नहीं कि वो भी सत्य है उनकी पूजा करने से काम चल जाएगा, ये भी सत्य है उनकी पूजा भी से काम चल जाएगा, ऐसा तो भगवान भगवद्गीता में नहीं बोल रहे हैं। भगवान भगवद्गीता में क्लियर बोल रहे हैं जिनकी आप पूजा करोगे उनके लोग जाओगे, है ना। देवी देवताओं की पूजा करोगे देवी देवताओं के लोग जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के लोग जाओगे, भूत की पूजा करोगे भूत के लोग जाओगे, मेरे पूजा करोगे मेरे लोग जाओगे। तो भगवान ही खुद अंतर कर रहे हैं, भगवान खुद डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? तो ये क्लियर हुआ आपको पहले, उसके फिर आगे चलेंगे। ये क्लियर हुआ कि सत्य क्या है? सत्य हम अपने अनुसार नहीं देख सकते हैं, सत्य शास्त्रों के अनुसार होगा। हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, भगवान बता रहे हैं अलग अलग रास्ते क्या होते हैं, और हर रास्ता ऐसा नहीं भगवान की तरफ जाएगा। जब भक्तों के संपर्क में आते हैं, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के संपर्क में आते हैं, तब हम सही रास्ते पर हैं, नहीं तो बहुत सारे अलग अलग जगह भटकने के पूरे पूरे परिणाम चांस। ठीक है, हाँ, अभी अगला।
महाभारत जो होता है,
महाभारत
उसमें जैसे कि दुर्योधन ने भगवान को नहीं पहचाना, मेरा कहना है कि जैसे अर्जुन ने भगवान को पहचान लिया, तो लेट अस सपोज कि अगर दुर्योधन भगवान अगर दुर्योधन की तरफ हो जाते और अर्जुन की तरफ नहीं रहते,
ये सब
तो
ये सब धारणा क्यों आती है? क्योंकि हम ऐसे, हमारे जो शिक्षण हुआ है स्कूल कॉलेज में, सपोज जैसे भगवान क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को लेके यहां रख दिया, सपोज H2O2 मिलके पानी बनता है, अभी सपोज किया हाइड्रोजन बढ़ा दिया तो क्या बनेगा? ये नहीं चलता, एक व्यक्तिगत संबंध होता है ना। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए तो पूछा गया ना कि क्या चाहिए, तो दुर्योधन ने क्या बोला, मुझे आपकी सेना चाहिए, अर्जुन ने क्या बोला, मुझे आप चाहिए। तो भगवान क्या बोला है, भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ही इदम उत्तमम, जो मेरा कि अर्जुन मैं तुमको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसीलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं। उन्हीं को समझ, भक्त्या माम अभी जानाती, जो भक्त हैं वो ही मेरे को जान पाएंगे। धृतराष्ट्र ने भी भगवद्गीता सुना ना, सुना धृतराष्ट्र के साथ क्या हुआ, सुन के क्या हुआ, भक्ति स्वीकार किया उसने, नहीं किया। तो हमारे अंदर भावना क्या, ऐसा नहीं कि सपोज दुर्योधन की साइड हो जाते तो सपोज वो भी मान लेता, ऐसा नहीं होता ना। जब हम पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हम अपना जो साइंस की जो बुद्धि है हमें स्कूल कॉलेज में डाल दी है, वो उसको हम शास्त्रों के अंदर डालना चाहते हैं। और कोई प्रश्न? हाँ, दो ही गज रूप, हरे कृष्ण। विधि का विधान,
काफी जगह प्रसंगों में देखा गया है कि जो देवी देवता चिंता है वो ये खुद बोलते हैं या ये खुद स्वीकार करते हैं कि विधि के काम को नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब इस विधि को निर्धारित करने वाला भी कोई एक शक्ति है, वो शक्ति कौन सी है? वो श्री कृष्ण है या निराकार परब्रह्म है जो पहले भी लिखते हैं? ये मेरा एक प्रश्न।
ठीक, एक मिनट, इसको पहले विधि का विधान तो शास्त्रों में बताया गया है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तिते, है ना, कि जो विधि है ना, और विधान, विधान मतलब एक तरह से भाग्य, और विधि मतलब जो उसको बनाने वाला। कहीं संस्कृत में जो विधि शब्द है ब्रह्मा जी को भी इंडिकेट किया जाता है, और ब्रह्मा जी मतलब सभी देवी देवता मिलकर भाग्य बनाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, हमारे हाथ में कुछ थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, उसका हम सदुपयोग करेंगे दुरुपयोग करेंगे। जैसे संडे है, संडे हम सुबह उठे, है ना, नई मूवी आई है और इस्कॉन मंदिर में लेक्चर है। अभी हमारे अंदर स्वतंत्र इच्छा शक्ति है कि हमें इस्कॉन मंदिर जाना है या नया मूवी देखने जाना है, ये तो हमारे हाथ में है ना। ऐसे नहीं, विधि का विधान तो यही है कि मैं मूवी देखने जाऊं। हमारे थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमें दे रखी है। तो जैसे उदाहरण बताते हैं श्रील प्रभुपाद, जैसे आप किसी एरोप्लेन में बैठ गए, आप यहां से जा रहे हैं भोपाल से मुंबई जा रहे हैं, तो अभी आपका मुंबई जाना तय हो गया, लेकिन एरोप्लेन के अंदर किससे बातचीत करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो आपके हाथ में है। उसी तरह से आपको मनुष्य देह मिला, ठीक है, तो अभी आपको भगवत गीता है, अभी आपको भगवत गीता के अनुसार चलना है, भगवत गीता के अनुसार नहीं चलना है, अपने मन से चलना है, तो वो हमारे हाथ में स्वतंत्र इच्छा शक्ति दे रखी है। ठीक है, तो वो जो देवी देवता है उनको भी कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान। अहम आदिर ही देवानाम मनुष्य नाम था सर्वस, कि मैं सारे देवी देवताओं का आदि हूं, भगवान आठवें अध्याय में बोलते हैं कि मैं सारे देवी देवताओं का स्रोत हूं। हम कृष्ण भी बोल, कृष्ण है या विष्णु है या राम है, वो देवी देवताओं के ऊपर है जो सभी देवी देवताओं को के द्वारा इस सृष्टि का संचालन करा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न मेरा ये है कि आपने बताया कि निराकार परब्रह्म
तो प्रश्न ये है कि निराकार और साकार बताया था, तो इसको और थोड़ा डिटेल में, तो ये परम सत्य जो है,
क्योंकि जब योग क्रिया के बारे में बताया जाता है तो ये कहा जाता है कि कलयुग में क्योंकि ब्रह्म है, जैसे आपने कहा कि नोबल
ठीक ठीक। तो श्रीमद् भागवतम में परम सत्य के तीन स्तर बताए गए हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते। तो जो परम सत्य होता है उसके तीन रूप होते हैं, भगवान जो व्यक्तिगत रूप है, परमात्मा जो सबके हृदय में है, और ब्रह्म जो निराकार। जैसे सूर्य है तो सूर्य देव है, सूर्य डिस्क है, ग्लोब है वो, और सूर्य की किरण है ना। तो जब हम बोलते हैं कि भगवान निराकार है या भगवान ब्रह्म है, अंततः रूप ब्रह्म है, तो हम कह रहे हैं कि सूर्य की किरणों को इंगित कर रहे हैं, भगवान के शरीर से जो तेज प्रकाश निकलता है वो ब्रह्म ज्योति है। तो सूर्य की जो किरण है वो भगवान का वो निराकार रूप है, है ना। फिर जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में भगवान है वो क्या, वो जो कृष्ण है स्वयं द्विभुज रूप है, उनका एक विस्तार है, और स्वयं भगवान कौन है? श्री कृष्ण। तो परम सत्य के तीन अलग अलग स्तर हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पहाड़ी पे गए, है ना, आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आप बहुत दूर से देख रहे हैं पहाड़ी को, तो पहाड़ी कैसी दिखाई देगी? सफेद कुछ है, हरा कुछ है, ऐसे अस्पष्ट कुछ दिखाई देगा, है ना। फिर आप और नजदीक जाएंगे तो आपको कुछ बादल दिखाई देंगे, है ना, फिर कुछ पेड़ पौधे दिखाई देंगे, जमीन दिखाई देगी। अगर आप पहाड़ी पे उतर गए तो क्या सारी वैरायटीज दिखना चालू हो जाएंगी। तो परम सत्य को हम कितना पास से देख रहे हैं, कितना दूर से देख रहे हैं, उसके आधार पर निर्धारित होगा हम परम सत्य की किस जो फीचर है उससे हम आ सकते हैं। तो जो दूर से देख रहा है ब्रह्म, हाँ ब्रह्म है हर जगह भगवान, जो थोड़ा सा और प्रकट हुआ भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में, तो जो ब्रह्म देख रहा है हाँ ब्रह्म में जाके हमको लीन हो जाना है, जो परमात्मा रूप में देख रहा है हाँ भगवान बस ध्यान करना है, और जो भगवान रूप में आया द्विविच रूप है तो वो सक्रिय रूप से सेवा करना प्रारंभ कर दे। तो ये सब श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में बताया गया। तो आप ये भगवद गीता है आपके पास है, आप श्रीमद् भागवतम ले जा सकते हैं, कम से कम प्रथम स्कंद उसको पढ़िए, उसमें सब ये पूरा अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया है ना। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद्गीता यथारूप की जय।